Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
अप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिष्यत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ ही होता है जो जीव के ब्रह्म से भिन्नता का निमित्तभूत अविद्या है। ब्रह्म से जीव भिन्न न होता हुआ भी भिन्न सा जीव को दिखाने वाली अविद्या है, उसे नष्ट करने वाली विद्या का नाम है उपनिषद। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति जीव तथा ब्रह्म के भेद के निमित्त भूत अविद्या को नष्ट कर देती है, इसलिए उसे कहा जाता है उपनिषद इस शब्द से। और उस प्रकार की अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमात्मिका वृत्ति जिस ग्रंथ से उत्पन्न होती है उस ग्रंथ को भी गौण रूप से उपनिषद इस नाम से कहा जाता है। मुख्य रूप से उपनिषद शब्द का तो अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार का साधन केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि मंत्रात्मक यह तलवकार शाखा का नवम अध्याय होने से इसे भी शास्त्रकार उपनिषद इस नाम से कहते हैं। और उपनिषदें अनेक हैं, बाकी उपनिषदों से इस तलवकार शाखा के नवम अध्याय का नवम अध्याय रूप उपनिषद का व्यावर्तन करने के लिए इसका जो प्रथम मंत्र है और उस प्रथम मंत्र में जो प्रथम पद है केन, इसको उपनिषद शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो केनोपनिषद यह इस ग्रंथ का नाम प्रसिद्ध हो गया। तो केनोपनिषद में प्रथम मंत्र में शिष्य का श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के प्रति एक प्रश्न है और प्रश्न करने वाला जो शिष्य है उसे जिज्ञासा है कि जितनी भी जगत में जड़ वस्तुएं होती हैं उसे पहले ये निर्धारण है, उसका कोई न कोई चेतन प्रेरक होता है। जड़ वस्तु में बिना चेतन की प्रेरणा से, चेतन की प्रेरणा के बिना कोई भी क्रिया नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती। चेतन ही से प्रेरित होकर के जड़ वस्तु में प्रवृत्ति होती हुई देखी जाती है। तो बाह्य अनात्म वस्तुएं जैसी जड़ है, ऐसे प्रश्नकर्ता शिष्य के बुद्धि में ये निर्धारण है कि इंद्रिया भी जड़ है, मन भी जड़ है, प्राण भी जड़ है और इनमें जड़त्व इसलिए है कि ये जड़ भूतों का ही कार्य है। तो जड़ मिट्टी का कार्य घड़ा जैसे जड़ है, ऐसे जड़ भूतों का कार्य इंद्रिया भी जड़ हैं, लेकिन उनमें क्रिया देखने को आ रही है। वह क्रिया बिना उनके प्रेरक चेतन के उनमें असंभव है और बाह्य गाड़ी आदि जड़ पदार्थों का प्रेरक तो हम व्यवहार अवस्था में जिसे चेतन मानते हैं, शरीरादि से विशिष्ट आत्मा को, शरीरादि को ही एक प्रकार से चेतन की सन्निधि में ये भी चेतन से प्रतीत हो रहा है और वह तो गाड़ी आदि बाह्य जड़ पदार्थों का प्रवर्तक निश्चित है, लेकिन इन इंद्रियों का प्रेरक जो इंद्रियों से भिन्न है वह किस प्रकार का है, उसका क्या स्वरूप है, वो निर्विशेष है या सविशेष है। लौकिक बाह्य पदार्थों का प्रेरक चेतन तो सविशेष होता है, उसकी कोई न कोई क्रिया या इच्छा आदि रूप प्रेरणा होती है, लेकिन इंद्रियों का प्रेरक उसका जो प्रेरणा रूप व्यापार है वो किस प्रकार का होगा, चेतन प्रेरक होने पर भी उसका किस प्रकार का व्यापार है, इसका निर्धारण प्रश्नकर्ता शिष्य के बुद्धि में नहीं है और उसी स्वरूप को, इंद्रियों के प्रेरक के स्वरूप को निर्धारित करने के लिए इन शब्दों से प्रश्न किया कि यह जो मन है अपना चिंतन रूप व्यापार जिस चेतन की प्रेरणा से कर रहा है वह चेतन सविशेष है या निर्विशेष है। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इससे शिष्य का यह प्रश्न है। और ये जो प्राण है वह अपना प्राणन रूप व्यापार कर रहा है तो वह भी जड़ होने के कारण प्राणन रूप व्यापार करने में उसकी प्रवृत्ति जिस चेतन से हो रही है वह चेतन सविशेष है या निर्विशेष है। ऐसे ही वाग इंद्रिय में वदन रूप जो क्रिया हो रही है, चक्षु में दर्शन रूप जो क्रिया हो रही है, श्रोत्र में शब्द ग्रहण रूप जो व्यापार हो रहा है, ऐसे बाकी यहां नहीं कहे गए जो इंद्रियां हैं उनमें भी जो अपनी अपनी प्रवृत्तियां हो रही हैं विषय ग्रहण करने के लिए, जिस चेतन से हो रही है उस चेतन का स्वरूप क्या है, ये प्रथम मंत्र से इंद्रियों के प्रेरक चेतन के स्वरूप विषयक प्रश्न है। और इस प्रश्न को सुन करके आचार्य भी संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होकर के उत्तर देते हैं द्वितीय मंत्र से। तो द्वितीय मंत्र से उत्तर ये दे रहा है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचम सव प्राणस्य प्राण चक्षुष चक्षु रतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मा लोकाद अमृता भवन्ति। इस वाक्य से शिष्य का जो जिज्ञास्य चेतन है उसके स्वरूप को लक्षित कराया आचार्य ने। इसमें अनेक वाक्य बनते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत तत् ज्ञात्वा अतिमुच्य, ऐसा एक अन्वय होता है, इसका अर्थ निकलता है कि जो इस वाक्यस्थ श्रोत्रस्य श्रोत्रम दो ही पद हैं, उनमें से पहले श्रोत्रस्य इस शब्द का अर्थ है आपकी श्रोत्र इंद्रिय, और श्रोत्र इंद्रिय किसको कहते हैं, जिससे शब्द का प्रकाश होता है, शब्द का ज्ञान होता है, शब्द का ग्रहण जिस इंद्रिय से हो रहा है, शब्द ज्ञान का निमित्त भूत कारण भूत जो इंद्रिय है वो है श्रोत्र, और श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ज्ञान हो रहा है, और इस श्रोत्र इंद्रिय में घटादि के तरह ही भौतिकत्व होने से जड़त्व है, तो जड़ घटादि जैसे नहीं जान पाते वे कहां हैं, उनके समीप में कौन है, ऐसे श्रोत्र इंद्रिय भी जड़ होने के कारण वह उससे संबद्ध शब्द को भी स्वतः नहीं जान पाएगा, और उसमें जो अपने से संबद्ध शब्द का ग्रहण रूपी ज्ञान हो रहा है, शब्द का प्रकाश करने का सामर्थ्य है उसमें, वह सामर्थ्य स्वतः उसमें नहीं है, अपितु ये कहा जा रहा है कि जिसकी सन्निधि से श्रोत्रस्य श्रोत्रम में दूसरा जो श्रोत्रम शब्द है वह श्रोत्रम शब्द बता रहा है कि जड़ श्रोत्र इंद्रिय में जिस चेतन की सन्निधि से अपने विषय शब्द को प्रकाशित करने का सामर्थ्य आ रहा है वह चेतन आत्मा है, और वह किसी भी बाह्य व्यापार से युक्त होकर, वो श्रोत्र इंद्रिय से अलग है, श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक श्रोत्र इंद्रिय रूप ही नहीं है, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय की श्रोत्र इंद्रिय को इसकी सन्निधि उपलब्ध होते ही, श्रोत्र इंद्रिय को इसका सानिध्य प्राप्त होते ही श्रोत्र इंद्रिय में एक सामर्थ्य आती है शब्द को प्रकाशित करने की, जैसे बल्ब प्रकाश करता है लेकिन बल्ब में स्वतः प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं है, पंखा हवा आपको देता है लेकिन उसमें स्वतः हवा प्रदान करने की शक्ति नहीं है, एक विद्युत रूपी शक्ति है जो आंख से नहीं दिखती, जिसे श्रोत्र से सुना भी नहीं जा सकता, तो इंद्रिय से भी ग्रहण नहीं हो पाती, लेकिन पंखे के चलने से जिसकी बिजली कौन है, विद्युत रूपी शक्ति कौन है, तो जिसकी सन्निधि पाकर के पंखा हवा देता है, जिसकी सन्निधि से बल्ब प्रकाश करता है, जिसकी सन्निधि से गीजर पानी को गर्म करता है, वह विद्युत है, तो विद्युत का ज्ञान कराने का ये एक माध्यम है, उपाय है, साधन है, इन सब यंत्रों में जिस शक्ति के रहने से अपना अपना कार्य करने की शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है, वह शक्ति विद्युत है, ऐसे ही इस शरीर के अलग अलग गोलकों में स्थित श्रोत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय अपने अपने विषय जो रूपादि हैं इनको ग्रहण करने का सामर्थ्य जिस चेतन की सन्निधि में प्राप्त कर रहा है, जिस चेतन के रहने से, जैसे बिजली के रहने से ही ये सारे उपकरण उनका जो कार्य है वो संपन्न करता है, ऐसे जिस चैतन्य के रहने से श्रोत्र इंद्रिय में शब्द प्रकाशन का सामर्थ्य उपलब्ध हो रहा है, उसे यहां श्रुति बता रही है कि वह श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक चेतन आत्मा है और उसकी उपस्थिति मात्र से ही, जैसे बिजली की उपस्थिति मात्र से ही बल्ब प्रकाश देना प्रारंभ करता है तो पंखा घूमना शुरू करता है, उसके लिए बिजली को अपनी उपस्थिति से अतिरिक्त, उनके साथ संपर्क से अतिरिक्त और कोई स्वतंत्र व्यापार करने की आवश्यकता उस विद्युत रूपी शक्ति को नहीं होती है। ऐसा एक चेतन है जो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि में अपना अपना व्यापार करने की शक्ति उसकी सन्निधि मात्र से उपलब्ध होती है। उसकी सन्निधि को छोड़ करके कोई अलग उसका स्वतंत्र व्यापार नहीं है। सूर्य की उपस्थिति में जो प्रकाश में होने वाले सारे व्यापार हो रहे हैं, उस व्यापार को करने वाले, क्रियाओं को करने वाले जो प्राणी हैं, उन प्राणियों को सूर्य अपनी उपस्थिति से अतिरिक्त कोई स्वतंत्र प्रेरणा नहीं देता है कि ये करो करके। सूर्य की उपस्थिति मात्र से ही प्रकाश में होने वाले कार्यों को संपन्न करने में प्राणियों की प्रवृत्ति हो रही है। ऐसे ही एक ऐसी चेतन वस्तु है जो किसी अन्य क्रिया या इच्छा या इशारा आदि प्रेरणा रूप व्यापार से युक्त नहीं है, कोई विशेषता उसमें नहीं है, निर्विशेष चेतन है और उस चेतन की सन्निधि में ये व्यापार होता है। श्रोत्र इंद्रिय का शब्द प्रकाशन रूप, चक्षु इंद्रिय का रूप प्रकाशन रूप, इन सब व्यापारों को निर्वर्तित कर रही है इंद्रिया जिस चैतन्य की सन्निधि में, उस चैतन्य को श्रोत्र से श्रोत्रम, इस वाक्यस्थ श्रोत्र इस शब्द से कहा जा रहा है, वाचो वाचम इसमें वाक शब्द से कहा जा रहा है, तो सौ प्राणस्य प्राण इसमें दूसरा जो प्राणस्य के बाद में प्राण ये प्रथमांत शब्द है उससे भी कहा जा रहा है, तो शीतल जल में जिस के सन्निधि से उष्णता उत्पन्न होती है, उष्णता प्रतीत होती है, वह अग्नि है जैसे, तो इस उदाहरण से इससे क्या होता है कि अग्नि का ज्ञान होता है। जल, शीतल जल जिसके संपर्क से उष्ण होता है वह अग्नि है। ऐसे जड़ स्रोत्रादि इंद्रियों में अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने की शक्ति जिस चेतन के सन्निधि से उपलब्ध हो रही है वह चेतन निर्विशेष आत्मा है। इस प्रकार का एक प्रकार से ज्ञान द्वितीय मंत्र के पूर्वार्ध से आचार्य ने कराया शिष्य को, और इसमें भी जब साधक यानी एक प्रकार से इसी उस श्रोत्रादि के शब्दादि ग्रहण रूप व्यापार का सामर्थ्य जिस चेतन की सन्निधि से उपलब्ध हो रहा है उसी चेतन को जानने से, आत्म रूप से जानने से ये फल बताया जा रहा है कि जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति। इसका अर्थ है अन्यत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि मंत्र जिसे अबाधित अपरिछिन्न ज्ञान स्वरूप ब्रह्म कह रहे हैं, वही ब्रह्म यहां पर श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि शब्दों से आचार्य लक्षित कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो साधक को साधना करते समय पहले इसमें तत्पदार्थ तथा त्वम पदार्थ दोनों को भी बताया गया। तत्त्वमसि एक महावाक्य है और तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ है जीव ब्रह्म रूप ही है। तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म, त्वम शब्द का अर्थ है जीव और असि शब्द का अर्थ है दोनों का एकत्व, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान होता है। ऐसे यहां पर श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि में त्वम पदार्थ को भी बताया है, शोधित त्वम पदार्थ को भी, तो शोधित तदर्थ को भी बताया है। साधक जब केवल अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात को और अपनी जो इंद्रियां हैं उसी इंद्रियों में होने वाली जो अपने अपने विषयों का ग्रहण रूप क्रिया है, प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का चेतन प्रवृत्ति का प्रवर्तक चेतन के रूप में देखता है, एक अपने ही उपाधिभूत इंद्रियों के प्रवर्तक चेतन के रूप में देखेगा, इन इंद्रियों से अपने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से अलग इनका प्रेरक चेतन, तो उस समझना कि इसे साक्षी के रूप में बताया गया है। तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ के रूप से श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि पदों से आत्मा का शुद्ध स्वरूप, जीव का शुद्ध स्वरूप बताया गया है। और जैसे मेरी चक्षु इंद्रिय का, श्रोत्र इंद्रिय का तथा बाकी इंद्रियों का सन्निधि मात्र से प्रेरक मेरा अपना वास्तविक स्वरूप है, ऐसे ही सभी जितने भी अपने से अतिरिक्त कार्यक्रम संघात है, शरीर है, प्राणी है, 84 लाख प्रकार के, उनकी भी तो इंद्रियां मेरी इंद्रियों के तरह ही जड़ है, उनका भी प्राण तथा मन मेरे प्राण तथा मन के तरह ही जड़ है, और उनमें भी बाकी प्राणियों के इंद्रियों में भी प्रवृत्ति हो रही है, तो उनका प्रेरक जो चेतन है वह भी उनकी इंद्रियों से अलग है और उसकी सन्निधि मात्र से उनकी मेरे इंद्रियों में, जैसे मेरे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अलग मेरे शुद्ध स्वरूप शुद्ध चेतन रूप स्वरूप से स्वरूप की सन्निधि से ही प्रवृत्तियां हो रही हैं, ऐसे सभी प्राणियों की इंद्रियों में जिस शुद्ध चेतन के सन्निधि मात्र से प्रवृत्तियां हो रही है वह शुद्ध चेतन है, उसे भी श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि शब्दों से आचार्य ब्रह्म के रूप में तत्पदार्थ के रूप में बता रहे हैं। और थोड़ा विचार ये करेंगे कि जैसे बाकी प्राणियों की इंद्रियों का प्रेरक जो चेतन है उनकी प्रेर्य बाकी सारी इंद्रियां हैं वो उनसे अलग हैं, ऐसे मेरे भी स्वरूप की प्रेर्य इंद्रियां जिससे मेरे वास्तविक स्वरूप से प्रेरणा पा रही है जो इंद्रियां, उनसे अलग जो इनको छोड़ करके अवशिष्ट रहा जो केवल चेतन मात्र भाग है, दोनों यानी श्रोत्रादि सभी प्राणियों के श्रोत्रादि का प्रेरक चेतन और मेरे वेष्टि उपाधि का प्रेरक चेतन, इन चेतन मात्र पर यदि दृष्टि डालते हैं तो उन दोनों चेतनों में कोई भेद करने वाला नहीं है, इस दोनों एक है और ऐसा उन दोनों का एक जो स्वरूप है उस स्वरूप को ये कहते हैं कि आत्म रूप से अनुभव करके, केवल मेरी इंद्रियों का प्रेरक मात्र मैं हूं, इतने ज्ञान मात्र से वेदांत का जो तात्पर्य विषय है वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा है उसका ज्ञान नहीं होता, इतना तो एक प्रकार से केवल अपने अपने कार्यक्रम संघात शरीर इंद्रिया मन बुद्धि का प्रेरक उनसे अलग शुद्ध चेतन है। इतना जानना तो एक प्रकार से सांख्यों के पुरुष को जानना है। सांख्यों के यहां जैसे पुरुष अलग तो है, स्वतंत्र है, चेतन है, लेकिन अनेक है। वह शरीर आदि से असंग होने पर भी, चेतन होने पर भी, निर्विकार होने पर भी उनके यहां अनेक है। लेकिन वेदांत के अनुसार, एको देवस सर्वभूते सुगूढ़ के अनुसार, ये अनेक आत्मा नहीं है। नान्यो अतोस्ति दृष्टा, नान्यो अतोस्ति श्रोता इत्यादि श्रुतियां ये बताती हैं कि ब्रह्म से अलग कोई दूसरा अनेक आत्मा नहीं है। और उस चेतन का आत्म रूप से अनुभव जिनको होता है उन्हें यहां पर कहा जा रहा है धीर। धीर इसमें धीर कहते हैं, धी कहते हैं बुद्धि को, और धीर कहते हैं बुद्धिमान को। और बुद्धि है सभी इंद्रियों के प्रेरक चेतन का आत्म रूप से ज्ञान, इसे धी कहा गया है। और यह धी जिसे प्राप्त हुई है वे हैं धीर। और ऐसे धीर लोग क्या करते हैं तो अतिमुच्च, जिसको उस चेतन का मात्र आत्म रूप से ज्ञान होगा तो उनका प्रेरिय जो इंद्रिय मन और बुद्धि है उनमें आत्मभाव नहीं रहेगा, आत्म तादात्म्य नहीं रहेगा। तो अतिमुच्च शब्द का अर्थ है उससे मुक्त होकर के। किससे मुक्त होते हैं तो जिनको अभी तक चेतन के अज्ञान अवस्था में मैं समझ रहे थे, इंद्रियों को ही, शरीरों को ही मैं इस रूप से समझ रहे थे, उससे अतिमुच्च का अर्थ है मुक्त होकर के, आत्मभाव छोड़ करके, अपनी अहंता को छोड़ करके। और फिर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जब अहंता नहीं रहेगी, केवल अहंता का आस्पद निर्विशेष चेतन मात्र होगा, तो इस शरीर में रहते हुए भी कहते प्रेत्य अस्मात् लोकात्। यहां लोक शब्द का अर्थ है लोक्यते अनुभूयते कर्म फलम अस्मिन इति लोकः, इस उत्पत्ति के अनुसार शरीर अपने प्रारब्ध कर्म का फलोपभोग जहां पर रह करके जीव करता है उसे कहा जाता है शरीर। लोक्यते अनुभूयते यानी अनुभव किया जाता है जीव के द्वारा, भोक्ता के द्वारा, जिसमें रह करके अपने किए हुए कर्मों के फल को, जिस जहां रह करके अनुभव किया जाता है वो है लोक। वो कहां किया जाता है? शरीर में रह करके। बिना शरीर के सुख दुख रूप कर्म फल की अनुभूति नहीं होती है। सुख दुख की अनुभूति करने के लिए शरीर की आवश्यकता है, इसलिए शरीर को कहा जाता है यद भोगायतनम तदेव शरीरम। भोग शब्द का अर्थ होता है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति का नाम है भोग। और यह भोग यानी सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति जीव जिसमें रह करके करता है उसे कहा जाता है शरीर। अपने किए हुए कर्म का फलोपभोग करने के लिए ही 84 लाख प्रकार के शरीरों की प्राप्ति जीवों को होती है। और उस शरीर को यहां पर लोक शब्द से कहा जा रहा है अस्मात् लोकात्, यानी जिस शरीर में रहते हुए बोध हुआ चेतन परमात्मा का, उस शरीर से प्रेत्य, और प्रेत्य का अर्थ है अलग होकर गए। जैसे मन बुद्धि से अहंता हट गई तो शरीर से भी अहंता हट जाती है, इसलिए शरीर में रहते हुए भी शरीर में आत्मभाव नहीं रहेगा, और शरीर में आत्मभाव नहीं रहेगा तो जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। यही जीवन मुक्ति यहां पर बताई। और जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक जीवन मुक्ति का अनुभव करता है। अमृता भवंती का अर्थ है अज्ञान के निवृत्त होते ही, जो पहले से ही अमृत भाव था, ब्रह्म भाव था, उस ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति इनके अंदर हो जाती है। अपने आप को अभी तक मरण धर्म वाले, विनाशशील धर्म वाले जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि है, तदात्मक समझ रहे थे, और जैसे ही इनमें से आत्मभाव हट जाता है तो फिर इनको मृत्यु की अनुभूति नहीं होती। एक तो ये प्रकार से यहां पर प्रत्यस्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति इस इन शब्दों से जीवन मुक्ति को बताया और विदेह मुक्ति को भी बताते हैं ज्ञान के फल के रूप से। जब शरीर प्रारब्ध का भोग पूर्ण होने पर छूट जाता है,